अन्न भी मुफ्त में मिलना चाहिए, अन्न और कपड़ा। यहां से इस मूल्य परिवर्तन का आरंभ होगा। गांधी ने इसका आरंभ करने के लिए ट्रस्टीशिप की बात रखी। ट्रस्टीशिप कोई एक सिद्धांत नहीं है, कोई कोरी फिलॉसफी नहीं है, कोई एक थियरी नहीं है। ट्रस्टीशिप एक प्रैक्टिकल पॉलिसी है, नीति है। और किस चीज की है? स्वामित्व और संपत्ति के निराकरण की। यह विषय मेरा दूसरा है, इसलिए इसको ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा। अब तक लोगों ने तीन ही तरीके जाने थे, एक एक्सप्रोप्रिएशन, दूसरा कॉन्फिस्केशन और तीसरा टैक्सेशन। एक्सप्रोप्रिएशन, स्वामित्व और संपत्ति को छीन लो, उसका प्रतिहरण करो। कॉन्फिस्केशन, कानून से जब्त कर लो। और टैक्सेशन, इस तरह से उस पर टैक्स कर लगाओ कि धीरे धीरे वो कम होती चली जाए। ये तीनों तरीके आज तक आजमाए गए। गांधी ने कहा इसमें मनुष्य मनुष्य के नजदीक नहीं आएगा। स्वामित्व और संपत्ति का निराकरण तो होना चाहिए, लेकिन इसके निराकरण की प्रक्रिया, टेक्निक ऐसी हो जिसमें इंसान एक दूसरे के नजदीक आए। आज मित्रों, गरीब और अमीर की तबीयत में फर्क नहीं है। देर आर नो साइकोलॉजिकल क्लासेस। हर गरीब अमीर बनना चाहता है, हर अमीर गरीबी से डरता है, हर मालिक दाम चोर है, हर मजदूर काम चोर है। इन दोनों की तबीयत बिगड़ी हुई है, दोनों बीमार हैं। गरीब की बीमारी गरीबी है, अमीर की बीमारी अमीरी है। गरीब समझता है कि मैं बीमार हूं, अमीर समझता है कि मैं बीमार नहीं हूं। यह फर्क है। लेकिन यूं हो, दोनों में कोई क्लास, साइकोलॉजिकल क्लास नहीं है। फिर भी जेपी ने क्लास वार की बात कही, वर्ग संघर्ष की। और अहिंसा मत वो सत्याग्रह होगा, ये भी कहा। इसका मतलब इतना ही है मित्रों कि गांधी विनोबा के संस्कार अलग हैं और जेपी के संस्कार अलग हैं। गांधी विनोबा के संस्कार वेदांत के हैं और भारतवर्ष के हैं, और जेपी के संस्कार भारतवर्ष के भी हैं लेकिन उससे अधिक मार्क्स के हैं। इसलिए दोनों की भाषा में, शब्दावली में फर्क हो जाता है, दोनों के अर्थ में कोई फर्क नहीं है। कहना इतना ही चाहते हैं कि जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, जो खोया हुआ है, उसकी पुरुषार्थ से, उसके पराक्रम से क्रांति होनी चाहिए। यही तो क्लास वार का मतलब था ना, कि जिस क्लास को क्रांति की जरूरत है, उस क्लास के प्रयत्न से क्रांति होगी, प्रोलेटेरियट के। यही क्लास वार का मतलब था। और क्लास वार का दूसरा क्या मतलब है वो आप जार्गन भूल जाइए, परिभाषा को भूल जाइए। परिभाषा विद्वानों के लिए होती है, और विद्वान परिभाषा में बोलते हैं, भाषा में नहीं बोलते। परिभाषा में इसलिए बोलते हैं कि उनकी धाक कुछ जम जाए, उसे रोग जमता है। वो जॉनसन से किसी ने पूछा था कि नेट किसे कहते हैं, वो जो नेट होता है टेनिस का। अब कोई कैसे समझाए कि इसके नेट की कोई व्याख्या हो सकती है। लेकिन उसने धाक जमा दी, इट्स ए रेटिकुलेटेड फैब्रिक डिकसेटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, परिभाषा कर दी। उसमें धाक जम गई लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। तो ये जो क्लास वार का सिद्धांत है उसका मतलब इतना ही है कि गरीब और पिछड़ा हुआ आदमी अमीर और उच्च वर्ण के आदमी की मेहरबानी पर, सफरेंस पर नहीं जिएगा, वो अपने भरोसे जिएगा, अपनी ताकत के भरोसे जिएगा, और वो ताकत प्रतिकार क्षमता होगी शांतिमय अहिंसा की। इतना ही उसका मतलब है, इससे अधिक उसका कोई मतलब आप न समझें। दूसरी चीज मैंने जो कहा कि हवा पानी के बाद अन्न आता है, हमारा देश किसानों का देश है, खेती का देश है और भूखों का देश है, इसमें मुख्य समस्या अन्न की है। इसलिए अन्न के उत्पादन के साधन, अन्न के उत्पादन के औजार और अन्न, तीनों का बाजार भाव नहीं होना चाहिए, सिर्फ मूल्य ही रहे। इसका प्रयोग इतिहास में पहली बार, अद्भुत और अपूर्व प्रयोग विनोबा ने किया, भूदान और ग्रामदान के रूप में। और मैं समझता हूं सहयोगात्मक क्रांति का यह पर्व दुनिया के इतिहास में उज्जवल पर्व था। विनोबा को जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, मुझे इसका कोई रंज नहीं है। ऐसे प्रयोगों में असफल होना भी बहुत बड़ा सद्भाग्य है, बड़े मुकद्दर की बात है। प्रयोग करने की हिम्मत तो हो इस तरह के, लोकमान्य तिलक की जीवनी में एक प्रसंग है। एक आदमी आया, उनसे कहने लगा कि मैं आपके स्विमिंग पूल में लोगों को तैरना सिखाना चाहता हूं। कहा कि सिखाइए, आपका क्वालिफिकेशन क्या है, योग्यता क्या है? मैं कभी पानी में डूबा नहीं हूं। तो लोकमान्य ने कहा कि मैं भी ये दो चार बार डूबा, आप बिल्कुल नहीं डूबे तो बड़े तैराक होंगे, आप तो कमाल के तैराक होंगे, ऐसा माहिर इतना तो मैं भी नहीं हूं, तो आप जरूर सिखाइए, लेकिन आप मुझे बतलाइए ऐसी कौन सी सिफत आप में है जिससे आप कभी पानी में डूबे ही नहीं। कि मैं कभी पानी में गया ही नहीं, तो डूबने का मौका ही नहीं आया। जिसने कभी प्रयोग ही नहीं किए, कभी हिम्मत ही नहीं की, वो कभी असफल नहीं हुआ। कभी इम्तिहान में बैठे ही नहीं तो फेल हो गई कैसे। विनोबा के इस प्रयोग की सफलताएं और कुछ हो या न हो, सबसे बड़ी सफलता यह है कि जयप्रकाश का आविर्भाव लोकनायक के रूप में हुआ। इसलिए मैं उस प्रयोग को बहुत महत्वपूर्ण मानता। तो यह ट्रस्टीशिप और विनोबा की भूमिका प्रयोग, जिसमें ट्रस्टीशिप में भी भावना दान की नहीं, सहयोग की है, बंटवारे की है, समविभाग की है, स्वामित्व और संपत्ति के विसर्जन की है। करोड़ों जमा करते जाओ और दान करते जाओ, ये ट्रस्टीशिप नहीं है, यह सौदापन है। इसमें किसी तरह की ट्रस्टीशिप नहीं है। ट्रस्टीशिप वर्ग निराकरण के लिए है, वर्ग समन्वय के लिए नहीं। वर्ग समन्वय असंभव है और अवांछनीय है, इम्पॉसिबल अनडिजायरेबल। उसी तरह विनोबा का भूदान और ग्रामदान भूमि को बाजार से उठाने के लिए था। भूमि का कोई भाव नहीं रहेगा, जमीन का भाव नहीं, जमीन के औजारों का भाव नहीं, अन्न का भाव नहीं, जमीन किसी की नहीं, औजार किसी के नहीं, और जो मेहनत करता है उसकी मेहनत के भी कोई दाम नहीं। आखिर समाजवाद और साम्यवाद, कम्युनिज्म और सोशलिज्म क्या है? काम का दाम के साथ संबंध नहीं होगा, काम का शक्ति ताकत के साथ संबंध, वर्क अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी। और उपभोग का संबंध आवश्यकता से, आवश्यकता जितनी हो जरूरत के मुताबिक उपभोग मिलेगा और ताकत के मुताबिक काम होगा। काम का दाम के साथ कोई संबंध नहीं। इसका, इस क्रांति का आरंभ विनोबा ने किया, लेकिन विनोबा तो वेदांती हैं, इसलिए परिभाषा सारी वेदांत की रही। अब हम सांस्कृतिक क्षेत्र का विचार करते हैं। उसमें भी पहली चीज यह है कि मनुष्य का की कीमत नहीं, मूल्य। आज मनुष्य पर भी प्राइस टैग है, मनुष्य की मनुष्यता भी बिकती है। पहले दिन मैंने कहा था, तो मनुष्य का मूल्य होगा, उसकी कीमत नहीं होगी। वो बाजार में कहीं बिकेगा नहीं। तो अब हमको किस तरफ से कहां जाना है? मनुष्यों को एक तरफ, एक दूसरे की तरफ बढ़ना है, इसका मतलब एलिनेशन की तरफ से रिलेशनशिप की तरफ। आज एलिनेशन है दुनिया में, रिलेशनशिप नहीं है। एलिनेशन किन किन कारणों से है? इनमें पहला कारण मैं एक एक लूंगा। पहला कारण है धर्म। आपको मेरी बात कुछ भयंकर लगेगी, लेकिन सही बात है। धर्म अध्यात्म नहीं है, इसको खूब अच्छी तरह समझ लीजिए। रिलीजन इज नॉट स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन इज नॉट गॉडलीनेस, रिलीजन इज नॉट मोरालिटी। ये तीनों चीजें जब निकाल देते हैं, अध्यात्म को, ईश्वर को और नैतिकता को जब आप निकाल देते हैं, उसके बाद जो बच जाता है उसका नाम धर्म है। मैं झूठ बोलता हूं, हैरिस साहब नहीं बोलते होंगे लेकिन समझ लीजिए कि झूठ बोलते हैं, तब भी वो मुसलमान है और मैं हिंदू हूं। हम दोनों सच बोलते हैं, तब भी वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूं। हम दोनों ईश्वर की भक्ति करते हैं, तब भी वो मुसलमान है, मैं हिंदू हूं। अब ये तीनों तो कॉमन हो गए ना, सच बोलना, झूठ बोलना, ईश्वर की भक्ति करना और आत्माओं को मानना, तीनों तो कॉमन चीजें हो गई। अब आप तो गणित जानते हैं, जो कॉमन होता है वो कैंसिल हो जाता है। इसके बाद जो बचता है उसका नाम धर्म है। फिर क्या बचा? मेरी जनेऊ, उनकी खतना, और कुछ बचा? इसका नाम ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है। संगठित धर्म अधर्म है। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन इज इररिलीजियस, क्योंकि उसमें ये तीनों नहीं समाते। उसका समाज बनता है, ऑर्गेनाइज धर्म का समाज बनता है। मैं मुसलमान होता हूं, यानी क्या होता हूं? हिंदू समाज में से दूसरे समाज में जाता हूं। मुसलमान ईसाई बनता है, यानी क्या बनता है? अब विनोबा कुरान भी पढ़ते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, गीता कुरान को समान मानते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, अवेस्ता भी पढ़ते हैं, जपू जी भी पढ़ते हैं और सबको समान मानते हैं। अब ये आदमी रोज बना बाइबल पढ़ने लगा, ईसाई बना, कुरान पढ़ने लगा, मुसलमान बना, इसकी क्या जरूरत है? ये समाज बनते हैं, संगठित धर्म के समाज बनते हैं, जिनके कारण धर्म के नाम पर युद्ध होते हैं। ईश्वर और धर्म के नाम पर दुनिया में जितना खून बहा है उतना न स्त्री के लिए बना बहा है, न जमीन के लिए बहा है और न तख्त के लिए बहा है। तो यह शैतान की तजवीज हो जाती है। संगठित धर्म भगवान की पूजा नहीं है, शैतान की तजवीज है, नापाक तजवीज है, एक अपवित्र वस्तु है। इसलिए मेरी तरुणाई से प्रार्थना है कि आप तो हिंदू मुसलमान के बेटे होंगे, कम से कम आपके बेटे हिंदू मुसलमान न पैदा हों। ये सारे पंडित पुरोहित मौलवा मौलाना मौलवी सब मेरा विरोध करेंगे, मैं जानता हूं, लेकिन मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आखिर मैं भी तो ना धर्माधिकारी हूं। मैं भी तो उन्हीं परिवारों में पैदा हुआ हूं। मित्रों, समाज में तीन बिचौलिए हैं, मिडिलमैन। एक का नाम पुरोहित है, उसका काम, उसका फंक्शन यह है कि भक्त और भगवान को नजदीक ना आने दे। दूसरे का नाम है दलाल, जो बाजार में होता है, उसका काम है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को मिलने न दे, इतना ही उसका फंक्शन है। और तीसरा है पॉलिटिशियन और लीडर, उसका काम इतना ही है कि एक नागरिक को दूसरे नागरिक के नजदीक ना आने दे। समाज में से इन तीनों बिचौलियों को हटाना चाहिए, तब क्रांति होगी। इसमें से आज जो ऑर्गेनाइज रिलीजन है उसका नाम संप्रदाय है, उसे मैं संप्रदाय कहता हूं, डिनोमिनेशन। वो रिलीजन नहीं है, डिनोमिनेशन है, संप्रदाय है। उपासना हो सकती है, विष्णु की पूजा करो, शिव की पूजा करो, दुर्गा की पूजा करो, लेकिन उसका संगठन क्यों करो? ऐसी सोसाइटी, क्लोज सोसाइटी, जिसकी दीवारें ऐसी हैं कि एक में से दूसरे में प्रवेश करने के लिए किसी की मदद लेनी पड़ती है, किसी बिचौलिए की, इसकी क्या जरूरत? इसलिए ये पहला संकल्प करना होगा, संप्रदाय निराकरण। मैं किसी संस्था या किसी गुट का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन एक बात आपसे कह दूं कि इस देश में संप्रदायवाद के लिए जिम्मेवार हमारे देश का मुसलमान है। मैं ज्यादा बहुसंख्या की बात कर रहा हूं। उसने यह माना कि इस्लामियत ही कौमियत है। जिन्होंने नहीं माना वो काफिर कहे गए, मुसलमान होते हुए भी, जैसे गांधी कहा गया। इस्लामियत ही कौमियत है, मैं मुस्लिम हूं इसलिए मेरी कौम भी अलग है। इस्लामियत ही राष्ट्रीयता है, यह उसने माना। और इसमें से कौमियत और इस्लामियत को बराबरी पर रखने से के कारण एक अलग देश की जरूरत हुई और पाकिस्तान उसमें से पैदा हुआ। धर्माश्रित राष्ट्रीयता, When you make your denomination or your community the basis of your citizenship, you are communal. Communalism की यह परिभाषा आप ध्यान में रखिए। मैं अपने संप्रदाय को या अपने पंथ को जब अपनी नागरिकता का आधार बनाता हूं तो मैं जमातवादी हूं, मैं communal हूं, यह communalism है। मेरे संप्रदाय पर आधारित मेरा ही राष्ट्रीयता। इसका आरंभ इस देश में मुसलमानों ने किया, इसलिए हम आप उनको सब जिम्मेवार मानेंगे, जो मुसलमान सही दिमाग रखते हैं वो भी और जो हिंदू सही दिमाग रखते हैं वो भी, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मुसलमान है बल्कि इसलिए कि वो लोग एक गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं। दूसरी चीज जो उसी के साथ आती है वो है प्रतिसंप्रदायवाद, काउंटर कम्युनलिज्म, जवाबी कम्युनलिज्म, जिसमें यह कहा गया है कि हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है, इस्लामियत ही कौमियत है, जवाब हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है। एक माइनॉरिटी का कम्युनलिज्म, एक मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म। मेजॉरिटी का जो कम्युनलिज्म होता है उसकी शक्ल सूरत कुछ राष्ट्रीयता जैसी होती है, लेकिन वो है मेजॉरिटी का कम्युनलिज्म। कैसे इसको समझाऊं? मेरे साथ आप तटस्थ होकर सोचिए। मनुष्य जब सोचता है तब वो कमिटेड नहीं होता, तटस्थ होकर ही सोचना चाहिए। विचार विचार है, उसमें ह्यूमिलिटी चाहिए और डिटैचमेंट चाहिए। ह्यूमिलिटी का मतलब है नो कमिटमेंट। मुसलमान ये कहता है कि इस्लाम भारतीयता से, इंडियन सिटीजनशिप से इस्लाम ज्यादा व्यापक है, ब्रॉडर है। मैं मानता हूं तुर्किस्तान में भी इस्लाम है, अरबस्तान में भी इस्लाम है, अफगानिस्तान में भी इस्लाम है, पाकिस्तान में भी इस्लाम है, बांग्लादेश में भी इस्लाम है। तो इंडियन सिटीजनशिप भारतीयता से इस्लामियत व्यापक है, मैं मानता हूं, लेकिन वो भारतीयता तो नहीं है, वो नेशनैलिटी तो नहीं है, इस्लामियत कौमियत तो नहीं है। कौमियत से व्यापक होगी, लेकिन अरबस्तान की कौमियत, तुर्किस्तान की कौमियत, अफगानिस्तान की नेशनैलिटी, ये सब इस्लामियत इनसे व्यापक होगी लेकिन बराबरी पर नहीं है। उसी तरह हिंदुत्व व्यापक है। मॉरिशस में राम गुलाम आए हैं वो भी हिंदू हैं, नेपाल में भी हिंदू हैं, अमेरिका में भी हिंदू हो सकते हैं, लेकिन भारतीयता और हिंदुत्व एक नहीं हो सकते। हिंदुत्व और भारतीयत्व एक नहीं हो सकते। हमारा झगड़ा कहां है, विवाद कहां है? तुम व्यापक कहो, जैसे मनुष्यता है, मनुष्यता तो सबसे व्यापक है, हम सभी मनुष्य हैं, लेकिन इसलिए मैं कहूं कि हिंदुत्व और मनुष्यता एक ही है तो नहीं होती है। तो फिर एक अर्थ में, एक माने में राष्ट्रीयता, नेशनलिटी ज्यादा व्यापक है। किस माने में? उसका लक्षण आपको बता दूं। भारतीयता उसे कहते हैं जिसमें भारत में रहने वाला भिन्न धर्मीय मुझे भारत के बाहर रहने वाले स्वधर्मीय से अधिक आत्मीय मालूम होता है, उसके लिए ग्रेटर किनशिप है। बाहर के हिंदू से यहां के मुसलमान ईसाई को मैं ज्यादा नजदीक का मानता हूं, भारत के मुसलमान से यहां के हिंदू और ईसाई को मैं ज्यादा नजदीक का मानता हूं। यह भारतीयता है। इन दोनों में जो फर्क है उसको समझ लेने की जरूरत है। आजकल इस पर बहुत बहस चल पड़ी है और बड़े बड़े लोग अपना दिमाग इसमें खपा रहे हैं, इसलिए मैं इसको साफ कर रहा हूं कि फर्क कहां आता है। जब कोई मुसलमान यह कहता है कि इस्लामियत ही कौमियत है तो मैं कहता हूं कि गलत है। उसका अगर यह दावा है कि इस्लामियत कौमियत से ज्यादा व्यापक है, जरूर है, जैसे कम्युनिज्म है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया नाम रखा गया, मालूम है ना आपको? पहले नाम रखना चाहते थे इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी रख नहीं सकते थे बिकॉज देयर इज नो इंडियन कम्युनिज्म। इसलिए फिर रखा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इस तरह से कम्युनिज्म सोशलिज्म ये सभी ब्रॉडर टर्म्स हैं, लेकिन इंडियन सिटीजनशिप ये अपने में एक ऐसी कल्पना है जिसमें सबका समावेश है। इस देश में जितने धर्म हैं और जितने संप्रदाय हैं उन सब का समावेश जिसमें है वो इंडियन सिटीजनशिप है। तो वो हमारे लिए नेशनलिटी की दृष्टि से ब्रॉडर है, क्योंकि उसमें इस देश में रहने वाले सब आ जाते हैं, सब शरीक हो सकते हैं। वो कहा ना उन्होंने कि हिंदी हैं हम, इकबाल ने, ये हिंदुस्तान हमारा है और हम हिंदी हैं। पहले हिंदू शब्द चलता था किसी जमाने में, तो यहाँ का मुसलमान भी अमेरिका में जाता था तो हिंदू कहलाता था, यहाँ का ईसाई भी जाता था तो हिंदू कहलाता था। उस वक्त हिंदू शब्द इंडियन के लिए, भारतीय के लिए चलता था। लेकिन अब सवाल यह है कि जो मुसलमान नहीं, ईसाई नहीं, यहूदी नहीं, पारसी नहीं, सिख नहीं, बुद्ध नहीं, बौद्ध नहीं, जैन नहीं, उसे क्या कहें? तो जो हिंदू धर्म को मानता है वो भी हिंदू है, और जो भारतवर्ष में रहता है वो हिंदू तो है ही लेकिन भारतीय है। तो भारतीयता और हिंदुत्व इस तरह पर्यायवाची नहीं हो सकते, ये दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते हैं ये शब्द। इस बात को समझ लेना बहुत आवश्यक है। मित्रों, इसी सिलसिले में एक चीज पर और आ जाऊं, हिंदुत्व की वास्तविकता क्या है, मुस्लिम की वास्तविकता उसका संप्रदाय है। कोई पूछे के मुझसे ट्रेन में पूछते हैं कई दफा, और दूसरे आदमी से पूछते हैं आपका नाम क्या है, सैयद महमूद, सवाल खत्म, उसके बाद कुछ पूछता ही नहीं कोई। तुम्हारा नाम क्या है, दादा धर्माधिकारी, लगातार सवाल पर सवाल, कहाँ रहते हैं, कहाँ के हैं, क्या है, जब तक मुझे मेरी जाति उसे न मालूम हो जाए तब तक सवाल पूछता ही रहेगा। क्योंकि हिंदू कोई है ही नहीं, या तो कोई ब्राह्मण है, कोई मुंगी है, कोई तेली है, कोई माली है, तो जानना चाहता है कि क्या है। हिंदू समाज में वास्तविकता जाति है, मुस्लिम समाज में वास्तविकता संप्रदाय है। शिया सुन्नी होंगे जैसे हमारे यहाँ भी वैष्णव और शैव वगैरह होते हैं, झगड़े भी होते हैं, जैनों के और हिंदुओं के रतलाम में दंगे हुए हैं, तो वो अलग चीज है। वास्तविकता को देखना चाहिए आंख खोलकर। हिंदू की वास्तविकता उसकी जाति संस्था है। अब वो जाति के लक्षण क्या है, तीन लक्षण आप समझ लीजिए जाति के। पहला लक्षण यह है कि इसमें कोई आ नहीं सकता। कभी आपने सुना कि कोई तेली बन गया है, कोई मादी बन गया है, ऐसा हो नहीं। मुसलमान बन सकता है, ईसाई बन सकता है, लेकिन तेली माली कोई बन गया है कभी सुना है? जाति में प्रवेश नहीं, कोई आ नहीं सकता, यानी इसमें एंट्रेंस का दरवाजा नहीं है, सिवा माँ की कोख के। एक ही दरवाजा है, जन्म, माँ की कोख, दूसरा दरवाजा नहीं है। जाति का दूसरा लक्षण है, मनुष्य से जो जितना दूर रहेगा वो उतना पवित्र समझा जाएगा। जो दूसरे के साथ विवाह नहीं करता एक पवित्र, किसी के साथ भोजन नहीं करता दूसरा पवित्र, दो पवित्र, एक सीढ़ी ऊंचा चला गया स्वर्ग की तरफ। किसी के साथ बैठता उठता नहीं, छूता नहीं, और पवित्र, और किसी को देखता भी नहीं तो स्वर्ग ही पहुंच जाता है। मनुष्य से जितना परहेज करता है वो उतना अधिक पवित्र माना जाता है। मित्रों, मनुष्य से परहेज ही पवित्रता की जिस समाज में कसौटी है, उस समाज में कैसे मानवता का विकास हो सकता है। इसलिए इस देश में सबसे कमी अगर किसी चीज की रही है तो मानवता की रही है, मनुष्य के मूल्य की रही है। जन्म का मूल्य रहा, संप्रदाय का मूल्य रहा, लेकिन मनुष्य का मूल्य नहीं रहा। खालिस इंसान, केवल मनुष्य, मनुष्य के नाते ही मनुष्य का मूल्य इस देश में कभी नहीं रहा। इसलिए ह्यूमन वैल्यूज, मानवीय मूल्यों का विकास नहीं हो सका। ये और चौथी चीज एक है, एंट्रेंस का दरवाजा नहीं, एग्जिट का ही दरवाजा है। इसलिए जो जाति में आराम से नहीं रह सका, जो जाति में इंसान इज्जत के साथ नहीं रह सका, उसको सिवाय हिंदू समाज छोड़ने के और कोई तरीका रास्ता चारा ही नहीं रह गया था। अंबेडकर ने हजार कोशिश की लेकिन समाज ही छोड़ना पड़ा, दूसरा रास्ता ही क्या है। जिस मकान में मैं इज्जत के साथ रह नहीं सकता हूं, वहां उसको छोड़े बगैर इज्जत है ही नहीं। जिस जाति की इज्जत नहीं है, उस जाति का इंसान क्या करे, उसे समाज ही छोड़ना पड़ा। नतीजा यह है कि हिंदू धर्म में से, हिंदू समाज में से निर्यात ही निर्यात हुआ है, आयात हुआ ही नहीं। इस देश के मुसलमानों की सांप्रदायिकता, ईसाइयों की सांप्रदायिकता, सिखों की सांप्रदायिकता हिंदू समाज की जाति संस्था की संतान है। इस रियलिटी को समझने की आवश्यकता है। और अगर हिंदू संगठन करना है तो इस बुनियाद पर कीजिए। प्रणाम पूर्वक और खेद पूर्वक आप चाहें तो इस जाति संस्था को तिलांजलि देनी चाहिए, और कोई चारा नहीं। जब तक जाति संस्था रहेगी, इस देश में से संप्रदायवाद का अंत नहीं होगा। क्योंकि जो निचली जाति के लोग हैं, वो अगर इज्जत से नहीं रह सकेंगे तो कहां जाएंगे। मैंने कल कहा था कि हमारे गांव कोई कम्युनिटी नहीं है। अगर वहां एक पाकिस्तान है तो हर गांव में और हर शहर में जातिस्तान है। एक एक मोहल्ले की एक एक जाति है, और गांव के बाहर जो रहता है वो अछूत है। ये गांव का नक्शा है, इस नक्शे को बदलना होगा। वो जेपी हमारे एक प्रतीक लेते हैं, जनेऊ, जनेऊ तोड़ने से क्या होगा। इसको ये केवल मित्रों बाह्य बाहरी प्रतीक नहीं है। ब्राह्मण का बेटा जूते की दुकान खोलता है तब भी वो चमार नहीं बनता, और चमार का बेटा प्रोफेसर बन जाता है तब भी वो ब्राह्मण नहीं बनता। अंबेडकर तो वेद सीखा हुआ था ना, लेकिन कोई ब्राह्मण उसकी घर में शादी कराता, ऐसा ब्राह्मण जो भ्रष्ट नहीं होता। इसके स्वरूप को समझ देने की आवश्यकता है। निरामिष आहार और सामिष आहार, मांस खाना न खाना, ये बिल्कुल भिन्न भूमिका का सवाल है। उसका जाति और पैदाइश के साथ कोई संबंध नहीं। उसका विज्ञान वैज्ञानिक विचार हो सकता है, सांस्कृतिक विचार हो सकता है, वो किया जाना चाहिए। बर्नार्ड शॉ ने भी कहा था ना कि आप मांस क्यों नहीं खाते, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ईट डेड कार्केसेस, मैं मुर्दों को नहीं खाना चाहता। तो वो ईसाई भी समझ सकता है, मुसलमान भी समझ सकता है। अब मैं कल अगर मुसलमान हो जाऊं तो क्या मुझसे ये कहा जाएगा कि मांस खाना लाजमी है। और जो मुसलमान ये कहेगा मैं उसे कहूंगा तू काफिर है, मैं नहीं हूं। क्या हर ईसाई के लिए लाजमी है कि वो मांस खाए? वो बिल्कुल भिन्न भूमिका का प्रश्न है, उसको इसके साथ मत मिलाइए। तो पहले मैंने कहा संप्रदाय निराकरण, दूसरा जाति निराकरण। जाति निराकरण के लिए मिश्र विवाह आवश्यक है लेकिन पर्याप्त नहीं है। संप्रदाय निराकरण के लिए पहली चीज यह होनी चाहिए कि धर्म परिवर्तन बंद हो जाना चाहिए। क्या आवश्यकता है? सारे धर्म अगर समान है तो फिर एक में से दूसरे में जाने की जरूरत क्या है? उपासना कहीं भी कर सकते हो। धर्म परिवर्तन बंद हो जाना चाहिए, प्रोसिलिटाइजेशन। जाति का अंत अगर करना है तो सजातीय विवाह बंद हो जाने चाहिए, दूसरा कोई उपाय नहीं है। जाति निराकरण एलिनेशन के ये प्रकार हैं जो मनुष्य मनुष्य में विच्छेद पैदा करते हैं। उनमें पहला है अपार्थीड, जिसे अपार्थीड कहते हैं ना, कि काले लोगों को अलग बस्तियों में रखो, अफ्रीका के काले लोगों को अलग बस्तियों में रखो, काले गोरे का भेद। दूसरा है अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी उसका अंतिम रूप है, उग्र रूप है। जाति का अंतिम रूप अछूतापन है, अस्पृश्यता है। और इसमें से पैदा होता है ग्जेनोफोबिया। ग्जेनोफोबिया का अर्थ है पराये से डर, अपरिचित से डर, जो अपना नहीं है उससे डर। आज की जो नेशनलिटी है उसमें ग्जेनोफोबिया है। आज की जो कम्युनलिज्म है उसमें ग्जेनोफोबिया है। जाति में भी ग्जेनोफोबिया है। अपरिचित से डर, ये इसमें से पैदा होता है। और ये जब तक है तब तक मनुष्य मनुष्य से मिल नहीं सकता। संप्रदाय निराकरण, जाति निराकरण, वर्ग निराकरण की बात मैं कह चुका हूं। और इसके बाद मैं एक ऐसी चीज कहने वाला हूं जिसको मानने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि अध्ययन करता हूं इसलिए कह देनी चाहिए। और वो है भाषा भेद निराकरण। मैं अकेला ही कहते आया हूं, अब तक लोगों ने मुझे पागल खाने में नहीं भेजा है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मनुष्य के कोई मातृभाषा नहीं होती। बगैर सीखे कोई भाषा ही नहीं आती उसे। पशु क्या आती है? पैदा होते ही रेंकने लगता है, हिनहिनाने लगता है, भौंकने लगता है, ये पशु कर सकता है। मनुष्य को माँ कहना भी सीखना पड़ता है, ताई कहना भी सीखना पड़ता है, अम्मा कहना भी सीखना पड़ता है, आई कहना भी सीखना पड़ता है, और मम्मी कहना भी सीखना पड़ता है। बगैर सीखे उसे एक शब्द भी नहीं आता। अब मुझे बतलाइए, महादेव देसाई का बेटा है नारायण देसाई, इसकी सास है बंगाली, ससुर है उड़िया, इन दोनों की बेटी उसकी पत्नी है, और इसकी बेटी ने शादी की है एक महाराष्ट्र ब्राह्मण से। अब क्या मातृभाषा है उन बच्चों की? कौन सी मातृभाषा है? जब इस देश में दो दुर्घटनाएं हुई, आचार्य अत्रे ने मुझ पर बड़ा एक लेख लिखा था मैंने जब यह कहा पहली दुर्घटना भाषिक पाकिस्तान है और दूसरी दुर्घटना भाषिक राज्य है। महाराष्ट्र में सिर्फ मराठी बोलने वाले रहेंगे, तमिलनाडु में सिर्फ तमिल बोलने वाले, कश्मीर में कश्मीरी बोलने वाले, असम में असमिया बोलने वाले, और सब ये चारों यूनिवर्सिटी के एमए कहीं इत्तेफाक से मिल जाए तो इनमें इशारों के सिवा कोई भाषा ही नहीं रहेगी आपस में बोलने की। भाषा का संबंध बोलने वालों की संख्या से नहीं है मित्रों, भाषा भी व्यापक होनी चाहिए, और व्यापक भाषा का अर्थ है वो भाषा जिसे भिन्न भाषिक आपस में बोलते हैं। जिस भाषा में ट्रांसलेशन के बिना, तर्जुमे के बिना लोग आपस में बोल सकते हैं वो भाषा व्यापक है। किसी धर्म की कोई भाषा नहीं होती। उर्दू कोई मुसलमानों की भाषा है? तुर्किस्तान का मुसलमान उर्दू बोलता है और बांग्लादेश का तो इसी पॉइंट पर अलग हो गया, इसी नुक्ते को लेकर। धर्म का किसी भाषा के साथ कोई संबंध नहीं। इस देश के ईसाई की कौन सी भाषा है? इस देश के पारसी की कौन सी भाषा है? बोहरे की कौन सी भाषा है? धर्म का भाषा के साथ कोई संबंध नहीं। हिंदू धर्म की तो कोई भाषा नहीं। अगर हिंदू धर्म की एक भाषा होती तो इतने राज्य ही नहीं बनते अलग अलग। और ये अब मैं कल सिख हो जाऊं तो क्या गुरुमुखी मुझे सीखनी पड़ेगी और लिखना पड़ेगा? मैं तो वहां निरक्षर हो गया था। चंडीगढ़ से भाकड़ा नानगल तक गया तो एक मील का पत्थर नहीं पढ़ सकता था और नाम की तख्ती नहीं पढ़ सकता था, यानी मेरा भी नाम लिखा होता दादा धर्माधिकारी तब भी नहीं पढ़ सकता था। इस देश में तो यह मजा है कि भाषा लिपि को भी भाषा ही समझ लिया, लिपि को भाषा बना लिया है। अगर सरदार गृह रोमन में लिखा हो तो अंग्रेजी हो गई, ग्रैंड होटल नागरी में लिखा हो तो हिंदी हो गई। मेरी समझ में ही नहीं आता है। रोमन अक्षर मिटाते थे लोग, दादा धर्माधिकारी अगर रोमन में लिखा हो तो बस वो ही अंग्रेजी हो गई, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। और इसमें कौन थे अगुआ? कॉलेज के विद्यार्थी, प्रोफेसर, सब पढ़े लिखे लोग। दया आती है इनके दिमाग पर। भाषा और लिपि में भी तमीज नहीं। विनोबा ने एक बात चलाई है कि भाई रहने दो अलग अलग बोलियां और भाषाएं, कम से कम एक लिपि तो करो जिसमें सत्यमेव जयते अगर लिखा है तो पढ़ तो सके सब लोग, नहीं तो सत्यमेव जयते लिखा है पढ़ नहीं सकते कुछ भी, कोई भी एक दूसरे की बात, कम से कम ये तो ना हो। लेकिन ये क्यों हुआ? भाषिक आग्रह के कारण हुआ। किसी भाषा का आग्रह करने से दूसरे में प्रतिक्रिया पैदा होती है। यू मेक योर अपोनेंट लैंग्वेज कॉन्शियस, उसमें प्रतिक्रिया पैदा होती है। हिंदी भाषिक के लिए कोई प्रांतीयता नहीं है। हिंदी भाषिक जो है उनमें कोई रीजनल पर्टिकुलरिज्म नहीं है, कोई क्षेत्रवाद नहीं है। क्यों नहीं है? उनकी भाषा अखिल भारतीय हो सकती है, उनमें प्रोविंशियलिज्म कभी आएगा ही नहीं। आएगा तो इंपीरियलिज्म आएगा, लिंग्विस्टिक इंपीरियलिज्म। अब जैसे हमारे यहाँ कृष्णा के पानी का झगड़ा हो सकता है, वो गंगा यमुना के पानी का झगड़ा करेंगे तो आमदनी बंद हो जाएगी। अखिल भारतीय तीर्थ, अखिल भारतीय नदियां उन्हीं के क्षेत्र में है, इसलिए उनकी अखिल भारतीयता बहुत सुविधाजनक है। उन्होंने आग्रह किया, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी इस देश की व्यापक भाषा है। व्यापक से मतलब विशाल, बहुत लोग उसे बोलते हैं। भाषा में तीन कसौटियां होनी चाहिए, एक तो वो यहाँ की हो, इस देश की, दूसरी वो स्वाभाविक हो, स्पॉन्टेनियस, भिन्न भाषिक जब एक दूसरे से मिलते हैं तो जिस भाषा में बोलने की कोशिश करते हैं वो भाषा हो, और तीसरी वो किसी की भाषा हो, आसमान की ना हो। ये तीनों कसौटियां हिंदी के लिए लागू होती हैं, वो खरी उतरती है। लेकिन हिंदी का आग्रह होने से क्या हुआ, इस देश में मैं समझता हूं स्वामी दयानंद सरस्वती का एक ही अखिल भारतीय दौरा हिंदी भाषा में हुआ। पहला अखिल भारतीय दौरा असली, यानी जो धर्म के लिए नहीं हुआ, नागरिकता के लिए हुआ, 1877 में हुआ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, और वो अंग्रेजी भाषा में हुआ। अंग्रेजी भाषा इस देश के भिन्न भाषिकों के लिए सामान्य भाषा बनी, जैसे पंडितों के लिए संस्कृत थी, बाबुओं के लिए ये अंग्रेजी बनी। इसलिए अंग्रेजी की भूमिका, रोल, अंग्रेजी का रोल हिंदी के रोल से ज्यादा व्यापक रहा। भाषा मित्रों पराई और अपनी नहीं होती है, भाषा अपने लिए होती ही नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे यहाँ के सेंसस में एक भाषा ऐसी है जिसका बोलने वाला एक ही आदमी है, अब वो किससे बोलता होगा, अपने से बोलता होगा तो पागल समझा जाएगा। अपनी पोशाक, अपना नाम, अपनी सूरत और अपनी भाषा अपने लिए नहीं होती। अपनी सूरत भी आदमी आईने में देखता है तो इसलिए देखता है कि दूसरे देखेंगे तो क्या समझेंगे, नहीं तो कोई बेडरूम में देखता है क्या सूरत, और बाथरूम में कोई कपड़े पहनता है, ये सब दूसरे के लिए होते हैं। भाषा दूसरे के लिए है, इसलिए भाषिक संकीर्णता, भाषा का अभिमान असांस्कृतिक है। भाषा से मनुष्य बड़ा है, मुझे दूसरे से बोलना है। इसीलिए तो गीता रहस्य के अनुवाद हुए तो हमें बड़ा अभिमान हुआ